ग्रंथसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम समकालीन अमेरिकी साहित्य के एक अहम उपन्यास पर बात करने वाले हैं।
जी हाँ, एक ऐसा उपन्यास जिसने हॉरर और स्वदेशी साहित्य दोनों पर ही बहुत गहरा असर डाला है।
हम बात कर रहे हैं स्टीफन ग्राहम जोन्स के 2020 में आए उपन्यास दी ओनली गुड इंडियंस की।
बिल्कुल, ये वो किताब है जो आपको डराती तो है लेकिन साथ ही बहुत से सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक सवाल भी खड़े करती है।
और एक मज़ेदार बात यह है कि शायद कुछ लोगों ने इसे द बफलो हंटर्स के नाम से सुना हो।
हाँ, हालांकि ये नाम कभी छपा नहीं, पर ये उपन्यास का जो मूल विचार है ना कि शिकारी ही शिकार बन जाता है, उसे बिल्कुल सही पकड़ता है।
सही कहा। खैर, हम तो इसके आधिकारिक नाम दी ओनली गुड इंडियंस पर ही रहेंगे। लेखक स्टीफन ग्राहम जोन्स खुद ब्लैकफीट नेशन से हैं और ये बात उनकी कहानियों में साफ झलकती है।
जी, उनकी लेखनी में आपको स्वदेशी परंपराएं मिलेंगी, आज की जिंदगी की मुश्किलें, पहचान का संकट, पीढ़ियों का दर्द, मतलब वो कल्चरल ट्रॉमा जिसे कहते हैं।
और ये सब हॉरर के साथ ऐसे घुला मिला होता है कि आप बस डर पर ही ध्यान नहीं दे पाते।
बिल्कुल, और ये उपन्यास जिसे उनकी ब्रेकआउट किताब भी कहते हैं और जिसने ब्रैम स्टोकर जैसा अवार्ड जीता, वो इसी स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना है।
तो आज हम इसी उपन्यास की गहराइयों में उतरेंगे, कहानी को समझेंगे, किरदारों के जज्बाती सफर को देखेंगे, उनके अपराध बोध को महसूस करेंगे।
हाँ, और जो मुख्य विषय हैं, लेखक का अंदाज है, उस पर भी बात करेंगे। कहानी घूमती है ब्लैकफीट नेशन के चार अमेरिकन इंडियन आदमियों के इर्द गिर्द,
जिनका अतीत लौट कर आता है एक भयानक साये की तरह।
असल में ये कहानी बदले की है, प्रतिशोध की, लेकिन ये कोई आम बदला नहीं है। ये उस अपराध बोध की कहानी है जो आपकी रूह में बस जाता है, उन कर्मों की जिनका हिसाब आपको देना ही पड़ता है।
और इसकी शुरुआत होती है 10 साल पहले हुई एक घटना से।
हाँ, थैंक्सगिविंग के दिन चार दोस्त, लुइस, गेब, कैस और रिकी, नौजवान थे, थोड़े अहंकारी भी शायद,
और असली इंडियन बनने की धुन में थे जैसा आपने कहा।
हाँ कुछ वैसा ही, तो वो रिजर्वेशन के उस इलाके में शिकार करने चले गए जो असल में बुजुर्गों के लिए था, गैर कानूनी तरीके से।
ये तो सिर्फ नियम तोड़ना नहीं हुआ, ये तो अपनी संस्कृति का ही अपमान हुआ एक तरह से।
उससे भी कहीं ज्यादा गहरा, उन्होंने ना सिर्फ वहां घुसपैठ की बल्कि एल्क यानी बारहसिंगा के पूरे झुंड को बेरहमी से मार डाला।
पूरे झुंड को?
हाँ, और सबसे भयानक बात, उन्होंने एक जवान गर्भवती मादा एल्क को मार दिया।
ओहो।
और कहते हैं कि लुईस, जिसने गोली चलाई थी, उसने मरने से पहले उसके पेट में पल रहे बच्चे की आखिरी छटपटाहट महसूस की थी। ये बहुत अहम है कहानी के लिए।
ये तो बहुत ही क्रूर है।
और फिर उस क्रूरता को और बढ़ाते हुए उन्होंने उन लाशों को वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया। ये प्रकृति का, शिकार की परंपरा का, अपनी संस्कृति का भयंकर अपमान था।
एक ऐसा गुनाह जिसकी परछाई 10 साल बाद भी पीछा नहीं छोड़ती।
बिल्कुल, 10 साल बाद ये चारों दोस्त अलग अलग हैं, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, शायद उस दिन को भूलने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन अतीत कहाँ पीछा छोड़ता है?
हाँ, वो लौटता है एक आत्मा के रूप में, उसी मारी गई गर्भवती एल्क की आत्मा, जिसे अक्सर एल्क हेड वुमन कहा गया है।
एल्क हेड वुमन,
ये कोई मामूली भूत नहीं है, ये एक ताकतवर, समझदार, रूप बदलने वाली शक्ति है, और वह इंसाफ चाहती है।
इंसाफ या बदला,
शायद दोनों। उसका मकसद साफ है, उन जिंदगियों का हिसाब लेना जो ली गईं, खासकर उस अजन्मे बच्चे का।
तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या हम वाकई अपने अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं, या हमारे कर्म लौटकर आते ही हैं?
शिकारी आप खुद शिकार बन चुके हैं, यही कहानी की धुरी है।
चलिए इन किरदारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि उनका जो अपना संघर्ष है वही कहानी को इतना असरदार बनाता है।
सबसे पहले लुइस क्लार्क, कहानी का पहला हिस्सा उसी के इर्द गिर्द है। उसने शायद सबसे ज्यादा कोशिश की है अपने अतीत से, अपनी पहचान से भागने की। उसकी जिंदगी जैसे मुख्य धारा में घुलमिल जाने की एक कोशिश है, असिमिलेशन जिसे कहते हैं।
लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब होती है? उपन्यास क्या कहता है इस बारे में?
उपन्यास तो बड़ी बेदर्दी से दिखाता है कि ये कोशिश नाकाम रहती है। लुइस का जो अपराध बोध है वो उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। और जब अजीब घटनाएं शुरू होती है, जैसे घर के अंदर एल्क का दिखना, तो पहले वो इसे वहम समझता है, पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये अतीत है जो लौट आया है।
उसका सफर इनकार से शुरू होकर आतंक तक जाता है।
हाँ, और उसका अंत भी बहुत दुखद है। वो आत्मसाथीकरण उसे बचा नहीं पाया, शायद और अकेला कर दिया। अतीत दरवाजा तोड़कर अंदर आ ही गया।
फिर है गैब्रियल यानी गैब, वो रिजर्वेशन के पास ही रहता है।
गैब का रास्ता थोड़ा अलग है, वो जैसे खुद को तबाह करने पर तुला है। खतरनाक काम करता है, लापरवाही से जीता है, उसका अपराध बोध शायद ज्यादा जाहिर है।
और वो डिनोरा को बचाना चाहता है, डिनोरा जो कैस की बेटी है।
हाँ, वो डिनोरा के लिए बहुत फिक्रमंद है। उसकी कहानी एक ऐसी किस्मत से भागने की कोशिश लगती है जिसके बारे में वो शायद खुद भी जानता है कि वो उसी के लायक है। वो अतीत से भाग नहीं रहा, वो उसी में धंसता जा रहा है।
और कैसिडी यानी कैस आयरन शेल, डिनोरा का पिता।
कैस इन सब में शायद सबसे ज्यादा स्थिर, सबसे जिम्मेदार लगता है, मेहनती है, डिनोरा का ख्याल रखता है, उसमें भी अपराध बोध है पर शायद दबा हुआ है।
वो प्रैक्टिकल है।
हाँ, प्रैक्टिकल है, और उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी की हिफाजत है, और आखिर में इसी कोशिश में उसकी जान जाती है, एक पिता का बलिदान।
और चौथा दोस्त रिकी, उसकी मौत तो कहानी शुरू होने से पहले ही हो जाती है।
जी, रिकी की मौत शुरू में एक पहेली की तरह है। दोस्तों को लगता है कि उसे किसी बार के बाहर नस्ल भेदी हिंसा में मार दिया गया,
लेकिन बाद में पता चलता है।
हाँ, जैसे जैसे ये अजीब अलौकिक घटनाएं बढ़ती हैं, उन्हें शक होता है कि रिकी की मौत भी शायद उसी आत्मा का पहला वार था, उसके भयानक इंसाफ के खेल की शुरुआत।
अब बात करते हैं उस ताकत की जो इनका शिकार कर रही है, एल्क हेड वुमन। आपने कहा वो सिर्फ भूत नहीं है, और ये बात दिलचस्प है कि उसे सिर्फ राक्षस नहीं बल्कि एक शोक में डूबी माँ की तरह भी दिखाया गया है।
बिल्कुल, ये चीज बदले के विचार को बहुत जटिल बना देती है। वो उसी गर्भवती एल्क की आत्मा है जिसे लुईस ने मारा था। वो ताकतवर है, चालाक है, रूप बदल सकती है,
कभी एल्क कभी इंसान।
हाँ, कभी एल्क कभी एक अजीब सी औरत जिसके कपड़ों में या बालों में पीली लटकन दिखती है, ठीक वैसा ही टैग जो उस मारी गई एल्क के कान पर था, या फिर इन दोनों का कोई भयानक सा मिला जुला रूप।
वो पीली लटकन जैसे एक निशानी।
हाँ, उस गुनाह की निशानी। उसकी प्रेरणा सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक तरह का बिगड़ा हुआ इंसाफ है, अपने झुंड और अपने अजन्मे बच्चे की मौत का बदला। वो प्रकृति का गुस्सा है, टूटी हुई परंपरा का क्रोध है, और माँ के गहरे दुख का प्रतीक है। उसके तरीके बहुत क्रूर हैं, जिस्मानी भी और जहनी भी।
लेकिन कहानी इन चार दोस्तों पर ही खत्म नहीं होती, अगली पीढ़ी भी इसमें शामिल होती है, केरिस की बेटी डेनोरा।
हाँ, डेनोरा आयरन शेल, वो कहानी की आखिरी और शायद सबसे अहम किरदार बनकर उभरती है। कैरिस की बेटी है, टीनेजर है, स्कूल की बास्केटबॉल स्टार है, अपने समुदाय के लिए एक उम्मीद है, भविष्य है।
शुरुआत में तो उसे कुछ पता नहीं होता इस सब के बारे में।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने पिता और उसके दोस्तों के उस भयानक अतीत से अनजान है, लेकिन धीरे धीरे वो न सिर्फ इस लड़ाई में खिंच जाती है बल्कि उस आत्मा का आखिरी निशाना बन जाती है।
उसे हम हॉरर फिल्मों वाली फाइनल गर्ल कह सकते हैं जो आखिर तक बचती है,
कह सकते हैं। लेकिन स्टीफन ग्राहम जोन्स इस आइडिया को बिल्कुल नया मोड़ देते हैं, एक आधुनिक स्वदेशी नजरिए से। डनोरा का सफर सिर्फ बचने का नहीं है
बल्कि
समझने का, सामना करने का, और शायद एक नया रास्ता निकालने का है। वो डर के साए में बड़ी होती है, अपने बाप दादाओं के गुनाहों का बोझ उठाती है, लेकिन वो उनके तरीके नहीं अपनाती। वो भविष्य है, एक ऐसा भविष्य जहां शायद परंपरा और मॉडर्निटी में टकराव न हो बल्कि कोई संवाद मुमकिन हो।
चलिए अब कहानी के घटनाक्रम को देखते हैं। उपन्यास तीन हिस्सों में है।
हाँ।
पहला हिस्सा लुईस पर।
हाँ।
शिकार के 10 साल बाद लुईस की ठीक ठाक चलती जिंदगी में अजीब बातें होने लगती हैं। घर में एल्क दिखना, पहले वो सोचता है थकान होगी या मेरा वहम है,
लेकिन फिर ये बढ़ता जाता है।
हाँ, भयानक रूप ले लेता है। उसका प्यारा कुत्ता बेरहमी से मारा जाता है, काम पर उसे वो पीली लटकन वाली औरत दिखने लगती है जिसे कोई और नहीं देख पाता। ये एक तरह की जहनी तकलीफ है, असलियत और वहम घुलने लगते हैं। ये दिखाता है कि डर सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी आता है।
बिल्कुल,
आत्मा उसके घर पर, उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती है, साफ कर देती है, मैं बदला लेने आई हूँ।
इस हिस्से का अंत लुईस के घर में एक भयानक लड़ाई से होता है।
वो लड़ने की कोशिश करता है।
हाँ, पर आत्मा बहुत ताकतवर है, और दुख की बात यह है कि उसकी पत्नी पेटा भी मारी जाती है। मरते मरते लुईस को आत्मा का पूरा प्लान समझ आता है, अब वो उसके दोस्तों के पीछे जाएगी। और यहाँ लुईस की कहानी उस असिमिलेशन, उस घुल मिल जाने की नाकामी को भी दिखाती है। उसकी जड़ें उसे खींच ही लेती हैं, पर एक भयानक शक्ल में।
दूसरा हिस्सा हमें वापस रिजर्वेशन ले जाता है, गेब और कैस के पास। उन्हें लुईस की मौत की खबर मिलती है।
वो बुरी तरह हिल जाते हैं। शिकार की वो भयानक यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। उनका वो अहंकार, वो बेरहमी, वो गर्भवती एल्क, उसके बच्चे की आखिरी छटपटाहट, सब कुछ।
और वो शायद शुद्धि के लिए स्वेट लौट जाते हैं।
हाँ, वो शायद कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तो दो बुजुर्गों शेनी और विक्टर के साथ एक पारंपरिक स्वेट लॉज सेरेमनी में जाते हैं। वो एक पवित्र जगह मानी जाती है सफाई और प्रार्थना के लिए।
लेकिन पवित्र जगह पर भी उन्हें अपने पापों का ही सामना करना पड़ता है।
हाँ, वो सेरेमनी एक डरावने सपने में बदल जाती है। लॉज का घना अंधेरा, दम घोटने वाली गर्मी, उन्हें एहसास होता है कि वो अकेले नहीं है।
आत्मा वहां भी पहुंच जाती है।
हाँ, वो वहां घुसपैठ कर लेती है और बड़ी बेरहमी से उन बुजुर्गों को मार देती है, जैसे शेनी को भाप और परछाई से बने एक एल्क से कुचलवा देती है। ये सीन दिखाता है कि पारंपरिक पनाहगाह भी तब काम नहीं आती जब गुनाह खुद परंपरा के खिलाफ इतना बड़ा हो। गेब और कैस खून में लतपत, जैसे तैसे बचकर भागते हैं। अब उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि ये आत्मा असली है और अगला नंबर उन्हीं का है।
अतीत से कोई पनाह नहीं, कहीं भी नहीं। अब तीसरा और आखिरी हिस्सा।
तीसरा हिस्सा एक लगातार चलने वाला शिकारी और शिकार का खेल है। आत्मा अब और भी खतरनाक हो गई है।
कैसे?
उसने मारे गए बुजुर्ग शानी की खाल ओढ़ ली है और इंसानों के बीच घूम रही है। उसे पहचानना मुश्किल है। गेब और कैस भाग रहे हैं, लेकिन अब उनकी पहली चिंता अपनी जान नहीं बल्कि डेनोरा की सुरक्षा है।
उन्हें लगता है कि आत्मा का इंसाफ आंख के बदले आंख जैसा है, बच्चे के बदले बच्चा।
हाँ, डेनोरा सीधे खतरे में है।
और कहानी का क्लाइमैक्स पहुंचता है डेनोरा की स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप गेम में। ये जगह थोड़ी अजीब है क्लाइमैक्स के लिए।
हाँ, ये समुदाय के लिए जश्न का मौका होना चाहिए, लेकिन आत्मा के लिए ये आखिरी टकराव का मैदान बन जाता है। आत्मा शानी के रूप में दर्शकों में बैठी है, डेनोरा पर नजर रखी हुई।
गेब और कैस उसे पहचान लेते हैं।
हाँ, पहले गेब डेनोरा को बचाने के लिए आत्मा का ध्यान भटकाता है, खुद को कुर्बान कर देता है। वो जिम से दूर ले जाकर मारा जाता है। फिर कैस भी अपनी बेटी को बचाने की आखिरी हताश कोशिश में मारा जाता है।
तो अब डेनोरा अकेली है उस भयानक शक्ति के सामने जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। यहां से क्या होता है?
वो कुछ ऐसा करती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। वो एल्केड वुमन को वन ऑन वन बास्केटबॉल खेलने की चुनौती देती है।
बास्केटबॉल? सच में ये तो कमाल है।
हाँ, अद्भुत है ये। डेनोरा अपनी मॉडर्न पहचान, अपनी कला बास्केटबॉल का इस्तेमाल करती है उस पुरानी जख्मी आत्मा को इज्जत देने के लिए।
वो हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देती।
नहीं, वो एक तरह का संवाद करती है, उसे स्वीकार करती है। वो उसे वो आखिरी दौड़ देती है जो उसे और उसके बच्चे को जिंदगी में नहीं मिली थी। ये सिर्फ खेल नहीं रहता, एक रस्म बन जाता है।
और इसका नतीजा क्या ये उस बदले के चक्र को तोड़ पाता है?
डेनोरा का ये अनोखा सम्मान भरा काम उस चक्र को तोड़ देता है। आत्मा जिसका दुख शायद पहली बार किसी ने समझा, जिसका मकसद एक अलग तरीके से पूरा हुआ, वो आखिरकार पीछे हट जाती है।
डेनोरा बच जाती है।
हाँ, वो बच जाती है, बदली हुई, जख्मी लेकिन आजाद। उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि शायद अपने समुदाय को भी एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो अतीत को भूलता नहीं बल्कि उसे समझ कर सम्मान देकर आगे बढ़ता है। ये उसके पिता की पीढ़ी के तरीकों से भागना, इनकार करना या लड़ना बिल्कुल अलग है।
ये अंत वाकई बहुत शक्तिशाली है, परंपरा और आधुनिकता का एक संगम। अगर हम उपन्यास के मुख्य विषयों पर दोबारा नजर डालें तो
सबसे बड़ा विषय तो वही है, अतीत का बोझ और कैसे एक पीढ़ी का गुनाह अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है, जिसे इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं। फिर पहचान का सवाल है।
हाँ, लुईस का उदाहरण दिखाता है कि जड़ों से कटना कितना खतरनाक हो सकता है।
बिल्कुल, और न्याय बनाम बदला ये बहस चलती रहती है। क्या एल्केड वुमन सिर्फ बदला ले रही है या वो प्रकृति के बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने वाली एक हिंसक ताकत है?
और शिकारी का शिकार बनना ये ढांचा तो है ही, पर शायद उपनिवेशवाद और ताकत के बदलते रिश्तों पर भी टिप्पणी है।
हो सकता है। और आधुनिक दुनिया में परंपरा का क्या हो, क्या उसे छोड़ लें या डेनोरा की तरह उसे आज की पहचान से जोड़ने के रास्ते निकालें? ये सब प्रकृति के नियमों को तोड़ने, उस अवैध शिकार से जुड़ता है।
लेखक की जो शैली है वो भी इस असर को बनाने में बहुत मदद करती है।
हाँ, स्टीफन ग्राहम जोन्स का नजरिया बहुत नजदीकी है। हम किरदारों के डर, उनके अपराध बोध को महसूस करते हैं। भाषा तेज है, सीधी है, असरदार है।
तनाव वाले हिस्सों में छोटे टूटे हुए वाक्य,
हाँ, दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। और लिखावट साहित्यिक होते हुए भी पढ़ने में आसान है। सिंबल्स बहुत गहरे हैं। एल्केड वुमन खुद प्रकृति, परंपरा, मातृत्व के गुस्से का प्रतीक है। बास्केटबॉल डेनोरहा की ताकत, उसकी आधुनिक पहचान और हल्का जरिया बनता है। और वो पीली लटकन,
वो उस गुनाह और कर्ज की लगातार याद दिलाती है।
सही, ये उपन्यास सिर्फ डराता नहीं है, ये उदासी, त्रासदी और एक अजीब सी हमदर्दी भी जगाता है। हम उन आदमियों का डर भी महसूस करते हैं और शायद उस आत्मा का दुख भी।
ये अपराध बोध, न्याय, पहचान पर गहरे सवाल छोड़ जाता है।
और ये हॉरर की उन पुरानी घिसी पीटी बातों से अलग है। ये कहानी एक समुदाय के अंदर के संघर्षों की है, अपने ही कर्मों के नतीजों की है। ये दिखाता है कि सबसे भयानक डर शायद बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही आते हैं, हमारे किए हुए कामों से।
आखिर में ये कहानी यही याद दिलाती है कि अतीत के काम हमारी पहचान और भविष्य तय करते हैं और उनसे भागना नामुमकिन सा है।
और शायद ये भी कि गहरे जख्मों और बदले के इस अंतहीन चक्कर को तोड़ने के लिए कभी कभी लड़ने की नहीं, बल्कि समझने की, सम्मान देने की और डायनोरा की तरह नए अनोखे रास्ते अपनाने की जरूरत होती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।